अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 93। अब मैं यहाँ से एक टॉपिक की आयतों को इकट्ठा पढ़ के आपको इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर जो भी मैसेज है हमारे लिए उसकी बात करूँगी। कुल्लु तआमी काना हिलल लि बनी इसराइल, हर तरह का खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए, मगर इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिही, मगर जो हराम किया याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पे, मिन कबली अन तुनज़्ज़लत तौरात, इससे पहले कि तौरात नाजिल होती। ये अमल कब हुआ? तौरात के नाजिल होने से पहले। और रह गई बात के जो इस बात के ऊपर बात करते हैं तो उनसे कहो, कुल फातु बित तौरात, कह दीजिए कि तौरात को ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, फतलूहा, फिर पढ़ो उसको अगर हो तुम सच्चे। तो उसका कोई रेफरेंस तो था ही नहीं, तो लिहाजा फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत, आयत 94, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कसीब मिन बाद ज़ालिक, फिर जो कोई अल्लाह पर झूठ खड़े इसके बाद, फौलाइक हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग ज़ालिम हैं। ऐसे लोगों ने जुल्म किया, यानी अल्लाह ताला पर ऐसी बातें करते हैं, ये गलत है। ये दो आयत जो हैं ये यहूद की एक गलत फहमी का इजाला है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की शरीयत में ऊँट का गोश्त और उसका दूध हलाल किया, इसी तरह तौरात में भी ये हलाल था। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका तذکرہ हमने पीछे पढ़ा, दो बातों की वजह से, एक तो कहते हैं कि उनको बीमारी लाहक हो गई इरकुन निसा की, और जिसमें ऊँट का गोश्त तकलीफ देता है, आज भी आप देखिए तो ये हैवी मीट में शामिल होता है। हज़रत याकूब ने कसम खा ली कि मैं ये गोश्त आज के बाद नहीं खाऊँगा। उन्होंने तो अपनी एक वजह के साथ खाई, बाद वालों ने उसको कानून बना लिया। और यहूद ने ये कहकर ऊँट का गोश्त खाना पीना छोड़ दिया कि चूँकि हज़रत याकूब नहीं खाते थे, होते होते बनी इसराइल में ये बात मारूफ हो गई कि ऊँट का गोश्त और दूध हराम है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, मुसलमानों की शरीयत में ऊँट का गोश्त भी हलाल था, दूध भी हलाल था। जब ये सब कुछ हलाल था तो यहूद ने ये शोशाम कर दिया कि ये मुसलमान जो है ना, ये बस हमारे खिलाफ ही बातें करते हैं, बस इनको तो हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती, और कहा कि तौरात में हराम था। अब ये बात मुसलमानों में आई, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज एक मसलक या एक फ़िरके का बंदा जो है वो दूसरे के ऊपर बात करने के लिए इस तरह की बातें कर दे। नुकसान क्या हुआ कि मुसलमानों में बेचैनी आ गई कि अल्लाह के नबी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम वही काम कर रहे हैं दीन का जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर कोई चीज़ें दूसरों ने जिसको हराम किया हुआ है आप उसकी इजाज़त कैसे देते हैं? तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि अल्लाह के बंदो, ये तौरात में अल्लाह ने हराम नहीं किया था, ये तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक ज़ाती अमल था, और उन्होंने जब किया तो बाज़ वालों ने शख्सियत परस्ती में आकर उस चीज़ को हराम कर दिया। और हज़रत याकूब का वक्त जो है वो तौरात के नज़ूल से पहले का है, जो अमल तौरात के अमल से पहले हुआ आप उसको तौरात की दलील कहाँ से ला सकते हैं? बात वाज़ेह हो रही है। तो लिहाजा इन आयात में ये बता दिया कि ऊँट का गोश्त और दूध किसी शरीयत में भी हराम नहीं था, ये अलग बात है कि किसी ने खुद ना खाया। यहाँ से फिर आप देखिए कि आपको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात मिलती है, और वो क्या है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो इतने चुने हुए नबी थे, जिनको अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी बच्चों का बाप बनाया कि जिनको नबूवत मिली, उन्होंने भी अगर कोई चीज़ खुद पे हराम की थी तो उसको कानून नहीं बनाया। पीछे से हम ये बात कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं अभी तक कि हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह सुबहाना ताला का है। अल्लाह की ज़ात ही किसी चीज़ को हलाल करती है और वही हराम करती है, नबी भी नहीं कर सकते। तो आज आप देख लीजिए कि फिर लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को हराम कर दें, कुछ को हलाल कर दें। आजकल रसूमात के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आप इधर उधर देखते हैं कि कोई कहते हैं ये मर्द ना खाएं, जैसे रजब के कूड़े हैं तो प्रेग्नेंट औरत ना खाए, या बच्चों वाली ना खाए, या कुछ और ना खाए। इसी तरह आप देखें कि बाज़ दफ़ा शादी ब्याह की कुछ ऐसी रस्में होती हैं जिसमें बेवा औरतों को शामिल नहीं होने देते। किसी ने बताया कि उनकी सास बहुत वहमी थी, सास थी या नंद की सास शायद वहमी थी, कुछ भी कहानी है, तो इनका मिस कैरेज हो गया, तो उन्होंने अपनी बहू जो इसकी नंद थी उसको अंदर से बुलवा लिया कि तुम पर इसका परछाया पड़ जाएगा, नौजुबिल्ला, कि उसका बच्चा मिस कैरेज हुआ तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ये क्या बातें हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कैसी मन घड़त बातें जो होती हैं इनको दीन की बुनियाद नहीं बनाते। दीन तो वही है कि अलबिर लैस अलबिर रान तो वल्लु वजूहकुम, तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। अब दूसरी बात है कि यहाँ चूंकि ये बात आई है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको खुद मना किया था, तो दूसरी एक रिवायत मिलती है जिसका इस आयत का पिछली आयत से ताल्लुक जोड़ देती है, और वो क्या है कि जिस तरह हमें कहा गया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी दूध और गोश्त जो उनको बहुत पसंद था ऊँट का, उसको अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? पहले दौर में ये इजाज़त थी कि आप कोई भी हलाल चीज़ अल्लाह की रजा के लिए ना खाओ, आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में ये कि तुम जिहाद करो, मेहनत करो, अच्छा खा रहे हो तो उसको अल्लाह के रास्ते में लगा दो। तो गोया कि इन आयात से हम सबको दीन का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर दिख गया कि दीन जो है वो किस तरह से कानून किसी एक को हाथ में लेने नहीं देता, और इसकी बात आसानी से दुनिया की चीज़ों में हमें समझ आती है। आप और मैं जिस मुल्क में रहते हैं, हम इनके कानून मानते हैं ना, माने या ना माने हमारी किसी हद तक अपनी मर्जी भी है, लेकिन क्या हम कोई कानून बना के ब्रिटिश हुकूमत के नाम पे उसको लागू कर सकते हैं? कोई झूठा कानून बना के आम कर दे तो देखिए उसकी सजा क्या होगी, मेरा लिए डेपोटेशन तो बहुत छोटी बात है ना। तो जब दुनिया के मुल्क, दुनिया की चीज़ें हैं, वो चीज़ जब लोग नहीं कर पाते, तो फिर आप बता सकते हैं कि दूसरी अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह के दीन के ऊपर हम ये बातें क्यों करें। ये था पहला एतराज़। अब चलते हैं अगले एतराज़ पे, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं तो फिर बात ज़्यादा समझ आएगी। अल्लाह ताला कहते हैं जो झूठ बोलेगा ये झूठा है। क्या पता चला कि किसी बुज़ुर्ग के नाम पे, किसी जिंदा मुर्दा, किसी की खुशी के नाम पे कुछ भी हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करना, चाहे किसी की मोहब्बत में करें चाहे किसी की नफ़रत में करें। दूसरा उनका शोशा क्या था उसका पहले जवाब आयत से लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर बताऊँगी। आयत देखिएगा, आयत नंबर 96, कुल सदक अल्लाह, कह दीजिए कि सच कहा अल्लाह ने। फत्तबेउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, पस तुम पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम की जो हनीफ थे, या फिर तुम हनीफ होके करो, दोनों ही बातें ठीक है, कि जिस तरह से भी हो सके हनीफ दीन की पैरवी करो या तुम फोकस हो जाओ। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से ना थे। ये आयत भी पीछे सूरत बकरा में हम थोड़े से लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ देख चुके कि तीनों गिरोह यहूद, नसारा और मुशरिकीन मक्का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मजहबी लीडर मानते थे और कहते थे कि वो हमारे मसलक या हमारे फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मसलक और उनका फ़िरका तो इताअत थी, अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह ताला ने उनको जिस दीन के लिए भेजा था उसके लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फोकस करके लगा दिया था। तो लिहाजा अगर तुम इस तरह अल्लाह के दीन के ऊपर अपनी मनमानी बातों को ला के कहोगे तो झूठ है। असल बात क्या है कि सदक अल्लाह, सच अल्लाह ने कहा। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह का कहना किधर हम पढ़ते हैं? कुरान में पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि ये आयत में आ गया। हमारे कल्चर में एक मारूफ चीज़ है कि कुरान पाक की तिलावत के बाद लोग कहते हैं सदक अल्लाहुल अज़ीम, ठीक है। किसी का ज़ाती फ़ेल है ना, ऐसे ही मोहब्बत से तो और बात है, लेकिन इसको एक आदत और नेकी बना के करेंगे तो दलील चाहिए। मुझे तो नहीं मिली, जो लोग पढ़ते हैं ऐसे या कुछ दीनदार लोग भी पढ़ते हैं तो फिर उनके पास हो सकता है कोई दलील हो, लेकिन मेरे इल्म में कोई नहीं है कि जब आप कुरान पढ़ लें तो उसके बाद सदक अल्लाहुल अज़ीम के क्या कहना है इसकी दलील मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस भी मिलती है और कुरान की आयत है कि जिसने किसी भी काम, यानी कोई महफिल है, कोई काम किया और उसके बाद क्या कहा, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तीन आयत पढ़ ली तो अल्लाह ताला उसको उस काम का पूरा अजर दे देता है, और अगर उस महफिल में कोई गलत बात हो जाती है, कुछ भी है, तो अल्लाह माफ़ करता है, इसकी दलील मिलती है। तो जब भी कभी तिलावत करें सबक में आगे पीछे तो आखिर में ये कह लें तो इसकी दलील मौजूद है, बाकी ये बात सदक अल्लाह पे हुई तो ये तो सच है कि अल्लाह ने कहा। ये कहने की बातें नहीं है, इसको दिल से मान के देखिए, मेरे रब ने सच कहा। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया कि एक बुज़ुर्ग थे कोई, तो कुरान नहीं पढ़े हुए थे, मतलब बूढ़ा शख्स था कोई, अनपढ़ होंगे, तो कुरान से मोहब्बत पड़ी थी, तो वो कुरान खोल कर ना क्या कहते होते थे हर आयत पैसे, ए रब जो आखे सच आखे, ए रब जो आखे सच आखे, तो कुल सदक अल्लाह। अगर हमारे दिल इस बात की दलील दे देना कि जो अल्लाह कहता है वो सच है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी इधर उधर भटके, करो क्या फत्तबे ओ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तुम पैरवी करो दीन इब्राहिम की जो यकसूत है। आप देखिए कि वो इस तरीके से इब्राहिम हनीफ थे कि अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ रुकावट बनी उसको ज़िंदगी से निकाल दिया, उसको हटा दिया, उसको पीछे कर दिया। अब आयत 96 और 7, इनके अंदर यहूद के एक दूसरे फितने का तोड़ है, वो क्या, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास इलल्लज़ी बिबक्का, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो मक्का में है, मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, जो बरकत वाला भी है और हिदायत का मरकज है तमाम जहान वालों के लिए। क्या है इसमें मजीद, आयत 97, फीही आयातुम बैयिनातुम मकाम इब्राहिम, इसमें बड़ी वाज़े निशानियां हैं जैसे मकाम इब्राहिम, वहां क्या होता है, वमन दखलहु काना आमिनन, और जो भी इसमें दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है। करें क्या लोग अब वहां जाके, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, और अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो हज करें इसके घर का। कौन, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो भी इस्तात रखता हो इसके सफर की, और अगर फिर भी ना करे तो वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, और जिसने कुफर किया तो वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम जहान वालों से। ये था यहूद का दूसरा फितना, और वो क्या था, कहते थे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले बैतुल मक़दस को बनाया। अब आप देखिए कि जिन लोगों को मकसद प्यारा नहीं होता ना, वो इस किस्म की चीज़ों में खोए रहते हैं। यहूद को अल्लाह ताला ने चुना था, अल्लाह ताला का फैसला था, अल्लाह ने उनको चुन लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहूद ने ये शोशा आम कर दिया कि सबसे पहले बैतुल मक़दस बना था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने क़िबले को क्यों बदला। पीछे बात हुई थी ना, सयकुलु सुफहाउ मिनन्नास, उसी के बराबर पे आयत सूरह आल इमरान में आ रही है। कहते थे कि बैतुल्ला नहीं होना चाहिए, देखो शुरू से बैतुल मकदस है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की खबर दे दी कि बैतुल मकदस पहला घर नहीं है। कैसे, आप अब इसको अगर सामने रख के देखें तो बैतुल्ला और बैतुल मकदस के अंदर क्या फर्क है। देखिए लफ्ज़ बैतुल मकदस के आते ही जहन में ये रखिए कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था जिन्नों की मदद से। इसकी रेनोवेशन हुई बहुत दफ़ा, इस वक्त हम उस पर बात नहीं करेंगे। पहली बात है कि हमें कोई कहानी की तरह लिखी हुई बात तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमें सही रिवायात से जो मज़मून मिलता है कि खाना काबा सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई उससे पहले अल्लाह ताला ने अपने घर को बना लिया था, फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से हर दौर में रहा कि लोगों को मौका मिलता कि इस घर को बनाने का, ठीक है। फिर उसके बाद होते होते जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक तूफान आया था पूरी जमीन पे, जिसके नतीजे में बैतुल्ला की दीवारें गिर गई थी, लेकिन बुनियादें मौजूद थी, वक्त के साथ साथ बुनियादों पे मट्टी पड़ गई तो पता नहीं चलता था किधर है। कुछ अरसा ऐसा गुजरा कि इसकी बुनियादें थीं लेकिन दीवारें नहीं थीं, इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल से बनवाया। पढ़ चुके पीछे, कवाइज जरफ इब्राहिम व इस्माइल कवायद मिनल बैत, यानी घर की बुनियादें उठा रहे थे, तो वो बुनियादें क्यों उठा रहे थे, क्योंकि दीवारें गिर चुकी थी। तो लिहाजा इस तरह से होते होते आज तक तकरीबन 10 दफ़ा खाना काबा की तामीर या उसकी तौसी हुई है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह से होती गई। अल्लाह सुबहान तआला यही बात इसमें बता रहे हैं कि बैतुल्ला तो सबसे पहले बना था, तुम कैसे इसकी बात करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फरिश्तों ने, लिख लें तरतीब जल्दी से, फरिश्तों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम के बाद हजरत शीस, शीन या सा, शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया इस्माइल के साथ, जिसका तस्करा हमने कुरान पाक में पढ़ा, फिर कौमे इमालका ने। वक्त के साथ ये होता था कि थोड़ी बहुत दीवारें हिल गईं, कुछ हो गई, तो फिर लोग उसको ठीक ठाक करते थे। अमालका के बाद जुरहम कबीले ने बनाया, जिसमें से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी थी, यानी इनके ससुराली कबीले ने। उसके बाद फिर कुरैश ने बनाया, और ये कब बना था आपको याद है, जब नबी सल्लम का बचपन था और याद है कि हिजरे अस्वद की तनसीब पे झगड़ा होने लगा, ये वो मौका था। ठीक है, कहते हैं कि पहली मर्तबा कुसई के दौर में बना और दोबारा नबी सल्लम के दौर में बना, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इसको बनाया गया, फिर हज्जाज बिन यूसुफ और फिर सुल्तान मुराद जो तुर्की से थे। आज भी आप वो जो छोटे गोल गोल बरामदे देखते हैं वो तुर्कियों की एक्सटेंशन थी और अभी तक आपको पता है कि ये चल रहा है। एक किताब है मेरे हाथ में, अगर आप ये देखें, बहुत ही अच्छी किताब है, जिनको मक्का मुकरमा की हिस्ट्री चाहिए, तारीख मक्का और मनवरा, और इसी तरह की बिल्कुल सेम एक बुक तारीख मदीना भी है। आप इसके अंदर से भी पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल्स हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने इस घर को मुख्तलिफ अदवार में बनवाया और कैसे लोगों ने इसको गिराने की कोशिश की। हमले भी हुए इस घर पे, आपको पता है, अबरहा नाम के शख्स ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने उसको रोक लिया। इसी तरह आपको पता है कि क़यामत के करीब हदीस में आता है कि एक छोटे कद का काले रंग का दुबला पतला शख्स आएगा और खाना कबा को उठाएगा। इसके नीचे कहते हैं एक खजाना सब्ज़ रंग का और उसके ऊपर सांप जो है वो अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए रखा हुआ है। लेकिन दुनिया में एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब लोगों को लफ्ज़ अल्लाह भी याद नहीं रहेगा। आज भी देखिए हज उमरे करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी रूह को लेके पाते हैं। तो जब दुनिया में इस तरह का डिक्लाइन आएगा तो अल्लाह ताला काबे को भी ख़त्म कर देगा, कुरान के अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के फितनों का दौर आ रहा है कि जैसे एक के बाद दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़ फितनों की आती है। लेकिन बहरहाल यह है कि अल्लाह ताला ने ये सब को रखा हुआ है। इसको आप बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं, तस्वीरें भी हैं और एक्सटेंशन में, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि जो इस वक्त एक्सटेंशन हो रही है, जिसको भी खाना काबा से मोहब्बत है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको मोहब्बत ना हो, सभी दिल में कुर्ब महसूस करते हैं। तो इस वक्त लेटेस्ट एक्सटेंशन हो रही है काबा में, जिसके बाद आप देखिए कि वो कितनी ज़्यादा उसमें वसत पैदा करते जा रहे हैं। और मेरा बड़ा दिल करता है कि हम ऐसी चीज़ें नॉन मुस्लिम्स के साथ शेयर करें। आप देखिए कि एक रौनत तारी होती है ना, जब भी कोई इस तरह से चीज़ें देखते हैं तो दिल के ऊपर वजद सा तारी हो जाता है और अल्लाह सुबहाना ताला के आगे झुकने को दिल करता है। तो कभी भी आप किसी अपनी दोस्त कोई साथी जो आपको लगें कि जिनके दिल में थोड़ा सा इस्लाम की कशिश को इस्लाम की मोहब्बत है, तो आप ज़रूर उनके साथ खाना कबा की तस्वीरें देखा करें। एक दफ़ा एक स्क्रीन सेवर था, किसी ने दिया मुझे कि आप लोग इसको कंप्यूटर पर डाल लीजिएगा, तो उसमें यह था कि हरम की कुछ तस्वीरें थी। अच्छा, अब ये होता है कि ऐसी चीज़ों को जब डाउनलोड करें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बहरहाल वो 3D किस्म की पिक्चर्स थी, मैंने उसको कुछ करके छोड़ दी। उसके बाद मैं किसी काम के लिए उठी, जब मैं वापस आई ना तो आपको पता कि मेरी स्क्रीन पर यूं खाना कबा के क्लोजअप और वो मूविंग थे। एकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बस मेरा जो है ना वो दिल पकड़ा गया, कि मैं जैसे अकेले में वहाँ बैठती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो इस तरह के सेवर्स हैं, बल्कि अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको ईमेल में भेज देते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारी वैल्यूज़ मुस्लिम वैल्यूज़ होनी चाहिए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो एक्सटेंशन हो रही है, उस दिन मैं उसकी एक वीडियो देख रही थी, किस तरीके से आपको पता है कि वो देखे ना, ये घर ऐसा है कि जो कभी भी खाली नहीं होता लोगों से, तो वो पूरा सामान बाहर बना रहे हैं लेकिन सिर्फ वहाँ जाके कुछ पिलर्स डालेंगे और फौरन कट कट करके बच्चों की जो हम चीज़ें असेंबल करते हैं, तो इस तरह से घर बनता है। और आप देखिए कि असल चीज़ ये देखिए कि खाना काबा के अंदर जो अल्लाह सुबहान तला ने इतनी चीज़ें रखी, उसकी वजह क्या है? इब्राहिम का हनीफ होना। आप अपने अमल की बातों पे आए, तक आपकी कोशिशों में इखलास नहीं होगा, अल्लाह ताला कभी भी आपको खैर उस तरह की नहीं दे सकता जो कि आपको मिलनी चाहिए। ये देखिए स्क्रीन पर आपके लिए मॉडल है,
وذلك بتخفيف الحرم القديم ليصبح بمنسوب صحن المطار وتحقيق الارتباط المباشر لمتروم التوسعة الثانية
جب یہاں اتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی یہ گھر سوچ میں بھی نہیں آتا
44% مما يمنح الطائفين شعورا واضحا بالسعة والراحة اثناء تأدية الطواف।
आप इसको देख के हुए ज़रा सोचिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी सोचा था यहाँ इतने लोग आएंगे? उन्होंने कहाँ बनाया था? ये देखिए ज़रा लोग, क्योंकि अरबी है तो आपको समझ तो आने नहीं, इसलिए उसको मैं कम करी, लेकिन आप इसके इमेजेस देखिए, पूरी बताया हुआ है कि कहाँ 50 मीटर चौड़ा है, कहाँ बताइए, लोगों का ढेर देखिए। क्या इतना इज़्ज़ाम देख कर दूसरों के दिलों पर रोब नहीं थारी होता? और इतनी सफाई, कभी अल्लाह लेके जाए, आप देखिए कि मेरा ख्याल है दुनिया में इतनी साफ जगह कभी नहीं जहाँ इतने लोग हों। खाली जगह तो साफ होती हैं बहुत सारी, लेकिन लोगों के साथ दिन रात। और वहाँ मैंने इतना अच्छा देखा कि जब वो सफाई करते हैं तो लड़के किस तरह करते हैं, स्पेशल उनके कपड़े होते हैं ना, तो वो सारे यूं खड़े होते हैं ऐसे साथ साथ जुड़ते हैं ना। फिर उसके बाद कहता है कि उनके हाथ में बड़ी सी रस्सी होती है गोल, फिर उसके बाद ना वो यूं फैलते हैं पीछे यल्ला 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 करते हुए। वो जब पीछे होते हैं ना तो वो रस्सी का एक सर्कल बन चुका होता है। अल्लाह ताला कहते हैं देखो फी ही आया तुम बेशिनात, ये कौन सी निशानी है, ये हिदायत की निशानी है। कितने बिगड़े हुओं को यहाँ की हिदायत मिल जाती है। आप अगर आयत के ऊपर देखते हुए जो अल्लाह ताला ने खाना काबा के मतलब खसाइस जहाँ बताए, अगर उस पर नजर डालें तो देखें पहली चीज से उसको लफ्ज़ बक्का कहा गया। बक्का क्यों कहते हैं इसको, बक्का का लफ्जी तर्जमा होता है सर फोड़ना। ये बात मैं आपको फिर दिखा देंगे इंशाल्लाह ताला अगर आपका दिल चाहेगा देखने को, लेकिन यह है कि ये चीजें वाकई देखने की हैं। अल्लाह अपने घर को इतना अच्छा मेंटेन करता है, इतने लोग वहां आते हैं और आप देखिए कभी कोई भूखा नहीं सोता। कई फकीर सिर्फ इसलिए वहां चले जाते हैं कि चलो पेट भर के रोटी तो मिलती है। और जब आप लोग खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया से जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है हम किसी जन्नत में आ गए, मजे मजे के खाने और इतनी अच्छी चीजें वहां मिलती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्या है, बक्का। लफ्ज़ बक्का जो है ना ये मक्का का पुराना नाम है, ठीक है। बा को मीम से बदल दिया गया। अरबों में इस तरह होता था, एक वजह तो ये बता दी गई कि है मक्का ही, लेकिन बा को मीम से बदल दिया गया। दूसरा बक्का का मानी होता है तोड़ देना, यानी जो भी गलत नीयत से यहां आएगा अल्लाह उसको तोड़ के रख देगा, ये मतलब है। इसी तरह इमाम जौसी कहते हैं कि बक्का का मानी होता है धक्का देना, यहाँ जाके धक्के बड़े पड़ते हैं तो इसलिए इसको बक्का कहते हैं। और एक चौथी तफसीर है बक्का की कि काबा की जगह जो है ना, यानी वो जो ब्लैक हाउस है वो बक्का है और पूरा शहर मक्का है, ये भी एक तफसीर है। पांचवी तफसीर क्या है, हदूदे हरम भी बक्का है, यानी सिर्फ काला कमरा ही नहीं बल्कि पूरी मस्जिद हराम की जहां तक बाउंड्रीज जाती हैं ये बक्का है और बाकी शहर जो है मक्का है। बस हमारे लिए तो ये पता है कि अल्लाह का घर बड़ा खूबसूरत है, जब बंदा वहां जाता है तो दिल खिलने लगता है और वाकई ऐसे महसूस होता है कि इंसान अपनी जिंदगी यहाँ आके लगा दे। दूसरी चीज देखिए मुबारकन, बरकत वाला। क्या बरकतें हैं वहां की, नंबर एक गुनाह माफ होते हैं। जितनी भी इंसान अपनी जिंदगी में कर चुका होता है कमियां कोताहियां, अल्लाह ताला बंदे को माफ कर देता है। फिर दूसरी इधर की बरकत क्या है, एक नमाज की जगह 1 लाख नमाज। खाना काबा में जाकर आप अगर हरम की हद में नमाजें पढ़ते हैं तो आपकी नमाजें बरकत वाली हो जाती हैं। यहाँ देखिए अमन मिल जाता है, मुझे तो ऐसे लगता है टेंशन फ्री जोन जहां पे हर चीज ऐसे। और कभी आप देखें ना तो कभी तवाफ को जहन में रखें, बिल्कुल कोई ऊपर से देखे ना अगर उसको तो बिल्कुल वही हरकत है जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की है। वहदत, एक जात के गिर्द घूमोगे तो सुकून है, कायनात का निजाम तौहीद पे चल रहा है। और आपको पता है कि इस काबा के ऊपर एक और काबा है, बैतुल मामूर, फरिश्तों का काबा है वो, और वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। और जिसने एक दफा कर दिया उसकी ख्वाहिश है कि दोबारा करूं, लेकिन आज तक मौका नहीं मिला। इतना प्यारा घर है अल्लाह ने हमें दिया। फिर आप देखिए तीसरी चीज इसमें देखिएगा कि बक्कन मुबारकन व हुदन। हुदन कैसे है वो, पहली बात है सारे आलम का किबला है, जो मर्जी लड़ते रहे नमाज के मसलों पे लोग, लेकिन किबला सबका एक ही है, बल्कि उसके लिए तो इंचिस के साथ नाप नाप के करते हैं। फिर दूसरी चीज देखिए कि यहाँ कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, ज्यादा कुरान का हिस्सा तो मक्का में नाजिल हो गया था ना, तो वह कुरान क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर एक और वजह हुदल लिल आलमीन की कि यहाँ आकर बहुत बिगड़े हुओं को हिदायत मिल जाती है। कभी किसी औलाद में, किसी बीवी में, शोहर में, किसी अपने में जरा सा जोश देखे ना, सरकशी देखे, किसी भी तरह कोई छुट्टियां कुछ, बस उनको ले जाए। एक तो माहौल से कटेंगे, दूसरा वहां का एक सुकून भी होता है अपने ना, उसको मोटा होता है ना, छुट्टियां होती हैं चले जाए। आप देखिए ना डिज्नीलैंड हमने देखा, कोई बात नहीं, जन्नत में बहुत सारे डिज्नीलैंड होंगे इंशाल्लाह। हमने ना भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सैरें की, हमने वर्ल्ड टूर पे जाके क्या कमाल किया, कोई जाके वहाँ इस्लाम फैलाते तो बड़ी बात थी, वो तो हम कर ना सके, हम तो खुद ही वहाँ की चीज़ें और आइसक्रीम में और खाने खा के आ गए, या कुछ चीज़ें देख ली, चीज़ें भी देखी तो उससे भी कोई अच्छी चीज़ मिली तो और बात है ना। लेकिन मक्का वह ज़रूर जाए, माँ बाप की सोच होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को बालिग होने के बाद उनको हज कराना है। आज आप देखिए कि हज से रुकने के लिए लोगों ने क्या क्या उजर है, आगे हम पढ़ेंगे, इसी आयत में पढ़ चुके हैं कि कुफर अल्लाह ने कहा हज ना करने को, इस्तेतात है और हज ना करे कुफर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स हज की इस्तेतात रखे लेकिन ना करे तो अल्लाह को परवाह नहीं, वो यहूदियों के मरे या नसरानी। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा के रिलीजन में बाकी सब कुछ था, नमाज रोजा था, हज नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी बैतुल मकदस का हज नहीं किया। तो लिहाजा यहाँ पे जाने की इंसान के दिल में तड़प भी होनी चाहिए और ख्वाहिश भी होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि इसके अंदर ये जो बात कही गई कि वहाँ अमन है, वमा फीही आयातुम बैनात, खुली निशानियाँ, क्या निशानियाँ हैं वहाँ? नंबर एक, जमजम, इससे भी बड़ी कोई निशानी होगी? एक बच्चे की एड़ियों से अल्लाह ताला ने एक पानी का ऐसा चश्मा खोला आज तक नहीं सूखा। असल में वो बीबी हाजरा की प्यास थी, वो एक नस्ल की प्यास थी, वो सिर्फ इस्माइल की प्यास नहीं बुझी, वहां से हिदायत का चश्मा फूटा। आज भी आप पूरी दुनिया की चीज़ों को जाके पानी को टेस्ट करें, जो जमजम की कंपोजिशन है, आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा, जमजम के ऊपर यकीन ने एक प्रेजेंटेशन होगा, पिछले साल सारा खोल के दिखाई थी चीज़ें, कि चैलेंज किया गया दुनिया की लेबॉरटरीज में, शुरू में एक शोशा भी दिया कि इस पानी को ना पियो, इसमें खराबी है, फिर उनको लेबॉरटरीज में भेजा गया और उन्होंने प्रूव किया कि इस पानी में खास चीज़ है कोई। आपने फरमाया कि खाने वाले के लिए खाना है, पीने वाले के लिए पानी है। भूख लगी होगी ना, जमजम पियेंगे तो पेट भर जाएगा, प्यास लगी होगी तो जमजम पियेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। और आप महसूस करें कि आम हालात में मैंने लोगों को देखा, जरा सा पानी पी ले ना तो वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ती है, वहां ऐसा नहीं, जितना मर्जी पी ले, अब वहां वॉशरूम भी जाना पड़े तो आप जरा सोचें कि जमजम से जाते हुए वहां कितना टाइम लग जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि उसमें शिफा भी, उसको पिए, सर पे डालें, कुछ भी करें, लेकिन कफन ना उसमें भी गो के लाए ताकि वो आपके ऊपर दफना दिया जाए तो सब कुछ ठीक होगा। ये मोहब्बत और चीज़ होती है, प्यार में बंदा कुछ भी कर लेता है, लेकिन उसको एक कानून बनाकर और ये सोच लेना कि अगर जमजम में भीगे हुए कफन में किसी को दफन किया तो उसको अब कुछ नेकियों की जरूरत नहीं, तो फिर ये तो ज़्यादती की बात है ना। फिर इसके बाद आप देखिए हिजरे अस्वद, इसमें एक निशानी है, जन्नत का पत्थर है। रिवायत में आता कि ये सफ़ेद था, ये भी इस बुक में से आप पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो इसकी बुक्स में मिलती हैं। हिजरे अस्वद सफ़ेद था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह आप देखिए सफ़ा मरवा, एक पहाड़ी इधर और दूसरी उधर और बीच में बीबी हाजरा भागी, अल्लाह को उनकी अदा इतनी प्यारी लगी कि क़्यामत तक के मर्दों को उनके नक्शे कदम पर चला दिया। ये अल्लाह की शान है ना, अल्लाह इखलास वाली नेकियां ज़ाया नहीं करता। फिर इसी तरह आप देखिए मुकाम इब्राहिम, वो पत्थर जिस पे खड़े होकर इब्राहिम दीवारों को खड़ा करते थे, लिफ्ट का काम करता था, ऊपर जाना होता तो वो पत्थर ऊपर हो जाता, जब नीचे आना होता तो नीचे होता, और इब्राहिम के कदमों के निशान है। इतना मुझे शौक आता है जब मैं जाती हूँ ना, तो आजकल आपको पता है कि गोल्डन केज में उन्होंने डाल दी, मैं खड़ी ही रहती हूँ, आपको पता है कि इतने गहरे गहरे उनके पाँव हैं और लंबे लंबे पाँव हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो हम नहीं देख सके, लेकिन हमारा ईमान है कि ये उनके पाँव के निशान है। अल्लाह बताता है कि मैं अपने रास्ते में कुर्बानियाँ देने वालों और हिजरतें करने वालों के कदमों के निशान भी संभाल लेता हूँ। अल्लाह से बड़ी कदरदानी कौन करेगा हमारी, कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह की शान है। फिर आप देखिए कि एक और निशानी आप वहाँ जाके महसूस करेंगे, और वो क्या है कि वहाँ जाकर दिल नरम हो जाते हैं, गुनाह की हिस ख़त्म हो जाती है, नेकी का शौक बढ़ जाता है। फिर आप देखिए कि इतना अमन है, अमनन की बात आ गई, कि इतने मर्द और औरतें साथ हैं, लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई फितना नहीं होता, कोई कद का वाकया हो तो वो हर तरह के लोग होते ही हैं, लेकिन इतने बड़े इज्तिहाम में ये नहीं हो सकता कि वहाँ कोई किसी को छेड़ दे या खराबी करे। तो अल्लाह ताला ने ये इतना प्यारा रखा। मकाम इब्राहिम है ना, ये पहले काबा के भी कुछ साथ होता था लगा हुआ, लेकिन अब तवाफ में सहूलत के लिए उसको थोड़ा सा दूर कर दिया गया। एक सर्वे करवाया गया था एक दौर में, कि लोगों से पूछा गया था कि इस सवाल का जवाब दें कि द प्लेस आई लाइक टू विजिट द मोस्ट, कौन सी जगह जहां आप सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि किस जगह का सबसे पहले नंबर आया? सबसे ज्यादा लोगों ने मक्का को कहा था। हम बिगड़े हुए सही, लेकिन हम मुसलमान हैं। मक्का मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में पड़ी हुई है, ये अलग बात है। फिर इसी तरह कहते हैं कि स्विट्जरलैंड, उसके बाद फिर लंदन, आपके लंदन में भी लोग आना चाहते हैं, है ना, हैरत की बात। बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए हर चीज़ एक एडवेंचर होती है ना। फिर इसी तरह USA और इस तरह इंटरनेट कैफ़े, कुछ लोगों ने कहा हम इंटरनेट कैफ़े में जाना चाहते हैं, यदि नेट पर बैठेंगे सब कुछ देख लेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये सब कुछ क्या है कि जो इसमें दाखिल हुआ काना आमीनन, अमन वाला हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, असल ये बात है कि अब लोगों का फ़र्ज है कि वो इस घर का तवाफ करें। हज फ़र्ज है, इसकी बात यहाँ बता दी गई, करना पड़ेगा। शर्त क्या है, अब यहाँ आप देख लीजिएगा कुछ इशारे हमें मिलते हैं, और वो क्या, मनिस्तता इलैहि सबीला, जो इसकी तरफ आने का रास्ता पाले। पांच बुनियादी चीज़ें किताबों में मिलती हैं जो आप लिख भी सकते हैं बाद में देखकर, कि जिसकी बुनियाद पे हज के लिए जाने वाले के लिए ये लाजमी चीज़ें, जिसमें एक चीज़ क्या है कि सफ़र का खर्च हो, पीछे वालों के लिए सामान हो, घर वालों के लिए, फिर इसी तरह से रास्ता पुरअमन हो, औरत है तो उसके साथ उसका महरम हो। इस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ये सारी बातें करते हैं कि जिसके पास इस्तेदात है वो हज करे। वमन कफरा, यहाँ वन कफरा को हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ कुफर से क्या मुराद है, कि जो इस्तेदात के बावजूद हज ना करे, इनकार करे, यानी हज के इनकार को यहाँ कुफर कहा गया। एक रिवायत में आता है कि उसकी पेशानी पे क़यामत के दिन लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। हज़रत अली की ये रिवायत है कि जिसने इस्तेदात के बावजूद हज ना किया तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। तो फ़इन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला जहान वालों से गनी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला की एक बेनियाजी है, कोई नेकी करते हो अपने लिए करो। तो अभी तक का जो सबक पढ़ा उसमें हमें खुलासा क्या मिला, कि दीन हमेशा कुर्बानी मांगता है। हज करना भी आसान नहीं और अल्लाह के रास्ते में देना भी आसान नहीं है। अब देखिए कि जो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में दी जाती हैं ना, अमूमन रुपए पैसों से हम उसको तोलते हैं, क्योंकि मादी चीज़ें दिखती हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको ज़रूर ही इंसान पसंद करता है, और अगर उसको वो देना चाहता है तो फिर आप देख सकते हैं कि उसकी लिस्ट लंबी है। मसलन आप देखिए कि जैसे मैं अपने ऊपर लेके सोचूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में जो चीज़ प्यारी है ना, ये कुरान और इसका पढ़ना पढ़ाना। और मैं कहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक आखिरी लम्हा भी इस कुरान की तालीम के लिए दे सकूँ ना, तो मेरे लिए ये कॉर्नर होगी। मेरा दिल करता है कि दुनिया में जो लोग इसके बग़ैर चले जाते हैं ना, वो महरूम है। फिर आप देखिए स्किल्स, बच्चियाँ हैं, आपके पास स्किल्स हैं, अभी तो आप कोर्स में है ना, ठीक है आपके बहुत हेक्टिक होगा मान लेते हैं, लेकिन नियतें करें कि हमने अपनी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स हैं, किसी को लैंग्वेज आती है, किसी को बोलना आता है, किसी को लिखना आता है, किसी को पढ़ना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत से जितने भी ऑनलाइन पे कोर्सेज चलते हैं, 20वें पारे के करीब स्टूडेंट्स में से अक्सर जो होते हैं ना, वो हेल्पर बन चुके होते हैं। हर बंदा अपनी स्किल्स देता है। आप ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया तो मैं क्या ये सब लेकर इसके साथ ही चली जाऊंगी कब्र में, ये तो बहुत ही ज्यादती की बात है ना। फिर इसी तरह आप देखिए अपना वक्त अल्लाह को दें। कल पैसा ज़्यादा अहम था, आज वक्त अहम है। आज हमारी यूथ वक्त नहीं दे पाती अल्लाह के लिए। वक्त ना होना और बात है, और है फिर भी नहीं देते। हम फिल्में देख सकते हैं, हम मूवीज़ देख सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम दीन के काम कर सकते हैं, नहीं करते। तो क्या हमारे अंदर ये तड़प नहीं होनी चाहिए? आप देखिए कि आपकी क्लास सिर्फ 4 दिन है, 3 दिन है, वल्लाही मैं आपको कह सकती हूँ कि आधा दिन उधर से इधर डाल लेना तो बराबर है, ठीक है ना। 3.5 दिन इधर डाल लें, 3.5 उधर है। कोई अपने ऊपर रहम ना खाए कि बहुत दुखी, बहुत मुश्किल, बहुत तंग। ये जो 3 दिन आपके गुजरते हैं बीच में, आप उसको ढूंढें, क्या कर सकते हैं, किस तरह करना है। अगर आप सिर्फ बैठ के सुनते रहेंगे, सुन रहे हैं कि ठीक है जी पढ़ लिया, तर्जमा याद कर ली, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें सामने नहीं आती, उस वक्त तक इंसान की स्किल्स का पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा हमें अल्लाह का बना के रखे।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين